जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधमाधव कुंज विहारी जय राधमाधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमोनातीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Giridhare Radha Giridhare Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Garanitai, 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 Jaya Garanitai. Nitai Gararibar, Ribalaribar. Hare Jaya Jaya Prabhupada 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Nevim Saraswatim Vyasam Sato Jayamudire Nashta Praesha Bhadresha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishike Pumukyaj Virandasya Jananjana Shalakaya Chaksharan Meridam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Sāpidam yena bhūtale स्वयं रूपद्वदामहम् ददाति स्वावदान्तिकम् वन्देऽहम् श्रीगुरो श्रीयुतावदकमलम् श्रीगुरोन्महिष्टवांश्च श्रीरूपम् जाग्रजातम् सहगणारघुनाथान्वितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् हरिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि हास्यार्थदेशतारिणे नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते सिद्धान्त सरस्वती निति नामिने श्रीमाशवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमे स्वम् निर्देशासज्जनप्रियः वैष्णवसारभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानाम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकम् कृष्णम् भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारम् भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयताम् सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवो विश्रालवेश्ये विमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः हर्षम् वेणोस्वनेर्गोपीर्गोपिनाथः श्रियेस्तु नः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरि वृषभानोऽसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, फिर इसके उपलक्ष्य में हम चैतन्य चरितामृत से जो चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा के विषय में हम जब चर्चा किए थे पिछले रविवार को, उसको आगे बढ़ाते हुए रामानंद संवाद को आज चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। वासुदेव विप्र का उद्धार और पूर्ण ब्राह्मण का संवाद और रामानंद संवाद को थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जब ग्रंथ का आरंभ किए थे, मंगलाचरण को रचना किया, तो ये जितने भी चैतन्य चरितामृत जितने भी श्लोक है अध्याय है वो सब इन्हीं मंगलाचरण का ही विस्तार है। इसलिए आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम चैतन्य चरितामृत के जो मंगलाचरण के श्लोकों का उच्चारण करते हुए हम आज का जो ये चर्चा है दक्षिण भारत की यात्रा की चर्चा है, शुरुआत की चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। वंदे गुरुनीश भक्तान्नीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशान् तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संजकम् वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रोसन्दोतमोनदम् यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यान्तर्यामि पुरुषः इति सोऽस्यांश वैभवः षडैश्वर्यपूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वम् परम् इह अनर्पितचरिम् चिरात् कारुण्यावतीर्णकलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदाहृदयकन्धरे स्पृहतव सचिनन्दन श्रीराधाकृष्णप्रणयविकृतिराजिने शक्तिरस्मात् एकात्मनो भुवि पुरदेहभेदम् गतौतौ चैतन्याख्यम् प्रकटमधूनतद्वयम् चैक्यमात्मम् राधाभावदति सुवलितम् नौमि कृष्णस्वरूपम् श्रीराधाय प्रणयमहिमा कीदृशो वा नैव स्वाध्योयेनद्भुतमधुरिमो मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम् चास्य मदनुपद कुदृशम् वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यसमाजनि सचिगर्भसिन्धुहरिन्दु सङ्कर्षणकारणात् वैषयि गर्भोदशायी चपयोद्दिशायी शेषस्येष्यां सकला सनित्यां नन्दाख्यरामं शरणं ममस्तु मायादीते व्यापि वैकुण्ठलोके पूर्णेश्वरे श्रीचतुर्व्यूहमध्ये रूपं यस्योद्धाति सङ्कर्षणाख्यं तं श्रीनित्यान्तरामं प्रपद्ये मायावर्ता जाण्डसङ्गाश्रयाङ्गः चेति साक्षात्कारणाम्भोधि मध्ये यस्यैकांशश्रीपुमानादिदेव तं श्रीनित्यानन्दरामम् प्रपद्ये यस्यांशांशांशशीलगर्भोदशायी यन्नाब्जम् लोकसङ्गातनालम् लोकसुष्ठुस्तुतिगाधामधातु तं श्रीनित्यानन्दरामम् प्रपद्ये यस्यांशांशांशः प्रथमात्मखिलानाम् पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्दिशायी होऽसिवर्तस्यत्कालस्योऽप्यनन्तः तं श्रीनित्यानन्दरामम् प्रपद्ये महाविष्णुम् जगत्कर्ता मायाय षजत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्यीश्वरः अद्वैतम् हरिनद्वैतात् आचार्यम् प्रतिसंशनात् भक्तावतारम् ईशम् तम् अद्वैताचार्यमाश्रये पञ्चतत्त्वात्मकम् कृष्णम् भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारम् भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। ये चैतन्य चरितामृत के पहले के 14 श्लोक है, इसके अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंच तत्व का वर्णन करते हैं। भले ही हम अलग अलग मंदिरों में राधा गिरिधारी, राधा राजबिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद जी को उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, या जगन्नाथ का विग्रह का सेवा करते हैं, या कोई भी विग्रह का सेवा करे, अंततः हम पंच तत्व का ही सेवा कर रहे हैं। आप जितने भी इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे, भले ही अलग अलग भगवान के नाम और रूप दिखेंगे, लेकिन एक तो निश्चित रूप में रहेगा, वो है पंच तत्व का एक फोटोग्राफ रहेगा। वो है हम मूलतः पंच तत्व के उपासक है, वी आर द वर्शिपर्स ऑफ पंच तत्व। तो ये पंच तत्व का जो तत्व है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, अद्वैताचार्य कौन है, और गदाधर पंडित कौन है, श्रीवास कौन है, तो इन सब का तत्व को जानना बहुत जरूरी है। तो इन तत्वों को जानने बिना अस्तित्व में हम किसकी उपासना कर रहे हैं वो हम जान नहीं सकते। तो वास्तविकता में वी आर वर्शिपर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कृष्ण का नाम लो, इसलिए हम कृष्ण का नाम लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कृष्ण का इस प्रकार उपासना करो, इसलिए हम उपासना करते हैं। तो इसलिए अगर सार रूप में देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु का अर्थ है कि पंचतत्व। पंचतत्व का परिचय देने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु गौरंग, श्री श्री गुरु गौरंग जयते। गुरु गौरंग, गौरंग का अर्थ क्या है, पांच। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले श्लोक में कहते हैं, छह तत्वों का निरूपण करते, कहते हैं मैं छह तत्वों को मैं प्रणाम करता हूं। வந்தே குரு நீசபக்தாம் ஈசன் நீசாவதாரகான் தத் பிரகாசன தத் சக்தி தத் கிருஷ்ண சைத்தன்ய சஞ்சகம். சஞ்சகம் சப்த அதி மகத்வபூர்ண ஹை, ஜிஸ்கே அந்தர் கஹா கயா ஹை கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு கோயி ஔர் நஹி ஹை, வோ யே சே தத்துவம் கா மூர்த்திமான் ஸ்வரூப் ஹை. அகர் ஆப் இன் சே தத்துவ மத்லப் குரு பிளஸ் யே பஞ்ச தத்துவ கோ சாத் மே நஹி பூஜா கரோகே, தோ உஸ்கே அந்தர் ஏக் பி வோ ஏக் பி வியக்தி கோ அகர் அகர் அலக் சே தேகோகே தோ சைத்தன்ய மகாபிரபு கா தர்ஷன் நஹி ஹோதா ஹை. கிருஷ்ண சைத்தன்ய சஞ்சகம் ஹை, சஞ்சகம் சப்த கே ஊபர் பஹுத் வியாக்யா கர்தே ஹுவே ஏ கௌடி ஆச்சாரிய கேதே ஹை, ஜப் தக் யே பஞ்ச தத்துவ பிரணாம் மந்திர கோ குரு கே பிரணாம் மந்திர கே பாத் உச்சாரண நஹி கியா ஜாய், கௌடிய வைஷ்ணவ கா பூஜா பூரா நஹி ஹோதா ஹை யா சேவா பூரா நஹி ஹோதா ஹை. தோ அபி ஹம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கா லீலா சர்ச்சா கர் ரஹே ஹை. பிச்லே ரவிவார் கோ ஹம்னே சைத்தன்ய மகாபிரபு கே தக்ஷிண பாரத் கி யாத்ரா கி தயாரி சர்ச்சா கியா, கிஸ் பிரகார் வோ தக்ஷிண பாரத் சே நிகல் கே தக்ஷிண பாரத் கி யாத்ரா கே லியே நிகல்தே நிகல்தே நீச்சே கி ஓர் ஆ தக்ஷிண கி ஓர் ஆ ரஹே, காஸ்கர் கே ஜகன்நாத்புரி சே கேசே வல்லபநாத் மே கீர்த்தன் கியே உதர் தக் ஹம்னே சர்ச்சா கியா. தோடா சா ஹம் ஜோ பிச்லி பார் ஜோ சர்ச்சா கியே தே சங்க்ஷிப்த் மே சர்ச்சா கர்கே ஜஹா ஹம்னே கதம் கியா தா பிச்லே ரவிவார் கோ உதர் சே அபி பிராரம்ப கரேங்கே. ஆப்கா யாத் ஹோகா சைத்தன்ய மஹாபிரபு சோச்னே லகே கி மே தோ சன்யாஸ் தோ லியா ஹூ, லேக்கின் சன்யாஸ் தேனே கா ஜோ மூல் காரண தா கி முஜே ஹர் ஜகா ஜாகே பிரச்சார் கர்னா ஹை, காஸ் கர்கே தக்ஷிண மே ஜாகே பிரச்சார் கர்னா ஹை, உன்கா உத்தேஷ் யே தா. லேக்கின் ஜகன்நாத்புரி மே ஜேசே ஆயே சைத்தன்ய மஹாபிரபு உன்கே பக்தோ கே பிரேம் கே சங்கதி மே இத்தனா டூப் கே, மஹாபிரபு சோச்னே லகே மே கேசே ஜாவுங்கா, அஸ்தித் மே யே ஜோ பக்த ஹை மேரே பிரேம் பிராண சே பி படகர் ஹை, அப்போ பிராண தியாக கர் சக்தா ஹூ லேக்கின் இன்கோ வைரஹ கா ஜோ பாவ ஹை சஹன் நஹி கர் சக்தா ஹூ. தோ ஏக் தின் மஹாபிரபு நே சோச்சா தோ முஜே குச் கர்னா ஹோகா, முஜே யுக்தி கர்னா ஹோகா. தோ உன்னே கியா யுக்தி லகாயா, சப் பக்தோ கோ புலா கே கஹா மேரா ஜோ பாயி ஹை விஸ்வரூப் உன்னே சன்யாஸ் லியா ஹை, சன்யாஸ் லேக்கே தக்ஷிண கி ஓர் சலா கியா ஹை, மே உன்கோ டூண்டனே ஜாவுங்கா ஔர் துரந்த ஹி வாபஸ் ஆவுங்கா. தோ ஜேசே யே பாத் சுனே சாரே பக்த ஏக்தம் பில்குல் ஹதாஸ் ஹோ கயே, உன்னே ஆப்கே பினா கேசே ஜீ சக்தே ஹை. லேக்கின் ஃபிர் பி மஹாபிரபு நே பஹுத் சம்ஜாயா, லேக்கின் இத்தனா உன்னே கஹா தீக் ஹை ஆப் தோ ஜாயியே சாத் பே ஹம் பி ஆ ஜாயேங்கே. மஹாபிரபு நே கஹா யஹி சமஸ்யா ஹை, மே சன்யாஸ் லியா ஹூ சன்யாஸ் தர்ம பாலன் நஹி கர் பா ரஹா ஹூ, சன்யாசி கோ பூமி பே ஷயன் கர்னா படதா ஹை, தபஸ்யா கர்னா படதா ஹை, லேக்கின் ஆப் முஜே தபஸ்யா கர்தே ஹுவே பஹுத் துக்கி ஹோ ஜாதே ஹோ, ஆப்கா துக் கே மே ஓர் துக்கி ஹோ ஜாதா ஹூ. ஔர் கபி கபி குச் லோக் தோ நாராஜ் ஹோ ஜாதே ஹை, ஜகதானந்த பண்டித் ஜேசே தோடா சா பி தபஸ்யா கர்தா ஹூ ஐசே நாராஜ் ஹோ ஜாதே தோ உன்கே பய சே முஜே போகனா படதா ஹை, சுக் சுவிதா கோ ஸ்வீகார் கர்னா படதா ஹை. கபி கபி குச் பக்த் தோ வோ சஹனி நஹி கர் சக்தே, முஜே டண்டா லேகே டாண்டனே ஆ ஜாதே ஹை, சோச்தே கி மே தௌ தீக்ஷித் பக்த் ஹூ, மே ஆப்கி பிரேம் மே இத்தனா டூப் கயா ஹூ, மே க்யா கரூ. தோ கிசி நா கிசி தரிகே சே நித்யானந்த் உன்கே நிவேதன் சே மஹாபிரபு நே கஹா தீக் ஹை மே லேகே ஜாவுங்கா ஏக் சேவக் கோ லேகே ஜாவுங்கா கிருஷ்ணதாஸ். மஹாபிரபு நித்யானந்த் உன்னே கஹா கி ஆப் அகேலே ஜாவோகே தோ ஆப் தோனோ ஹாத் சே ஜப் கர்தே ரஹோகே, ஜப் கா கர்தே கவுண்டிங் கர்தே ரஹோகே, தோ உஸ் சமய ஆப்கா பஹிர்வாஸ் கௌன் லேகே ஜாயேகா, கௌபின் லேகே கௌன் ஆயேகா, ஹாத் கர்கே ஜப் கர்தேகே தோ பேஹோஷ் ஹோ ஜாவோகே ஆப், ஆப்கா கமண்டலோ கௌபின் குச் சுரா லேகா, கம் சே கம் சாத் மே தோ ஏக்கோ லேகே ஜாவோ. தோ ஹம் சைத்தன்ய மஹாபிரபு ஜிஸ் பிரகார் இன்கா பக்தோ கா ஆக்ரஹ கோ ஸ்வீகார் கியே ஔர் ஔர் ஏக் படி சிந்தா ஹை சைத்தன்ய மஹாபிரபு கோ, ஐ சப் பக்தோ கோ தோ அனுமதி லே லியா லேக்கின் சாரமட்டாச்சாரிய சே கேசே அனுமதி லூ. தோ சைத்தன்ய மஹாபிரபு பஹுத் படே டரே ஹுவே தே, அபி கேசே பி கர்கே குச் பக்தோ கே சாத் மே மஹாபிரபு சாரமட்டாச்சாரிய கர் மே கயே, கர் மே ஜாகே சாரமட்டாச்சாரிய கா ஹாத் பகடே கஹா கி மே ஆப் சே ஏக் ஆதேஷ் மாங்கனே ஆயா ஹூ. அப் தேகியே தீனோ லோகோ கே ஈஸ்வர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஹி சைத்தன்ய மஹாபிரபு ஹை, பக்தோ கி பிரேம் மே இத்தனா விவஷ் ஹோ ஜாதே ஹை கி மஹாபிரபு ஜாகே சாரமட்டாச்சாரி உன்கோ சிக்ஷா தேகே உன்கோ வைஷ்ணவ் பனாயா. ஹா பஹலே தோ சாரமட்டாச்சாரி மாயவாதி தே, வைசே சாரமட்டாச்சாரி ஜித்னா பிரேம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மஹாபிரபு கோ உன்னே கஹா கி அபி பஸ் முஜே ஜானா ஹை தக்ஷிண பாரத் மே உஸ்கா ஆக்யா மாங்னே ஆயா ஹூ. யே மஹாபிரபு கா பாவ் தேகியே இத்தனா நம்ரதா, அஸ்தித் மே பகவான் तो हर चीज में महान है, तो नम्रता को प्रकाशित करने भी महान है. तो ऐसे में भिक्षा आज्ञा मांगने आया हूं. तो जैसे मांगने आए तो महाभारताचार्य ने कहा कि मैं आपके विरह में कैसे जल सकता हूं. मैं तो जी नहीं सकता हूं, तो कम से कम मुझे संभालने के लिए, होश को संभालने के लिए आप कुछ दिन और मेरे पास में रहिए, इतना दिन जा रहे हो तो मेरे साथ में रहना है और मेरे घर में भोजन करना है। तो महाप्रभु ने सर्वमठाचार्य के आग्रह को स्वीकार किया। 5 दिन तक वो चैतन्य महाप्रभु सर्वमठाचार्य घर में रहे। सर्वमठाचार्य की जो पत्नी है उनको बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना के खिलाई। और एक दिन समय आया जो महाप्रभु ने क्या किया, जगन्नाथ मंदिर में गए और जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए, विदा लिए और उधर का पंडा आके पुष्पहार महाप्रसाद दिए और चैतन्य महाप्रभु चल पड़े। जैसे चल पड़े अलरनाथ की ओर जा रहे थे, उधर सर्वमठाचार्य ने कहा जाओ उनके शिष्य को चैतन्य महाप्रभु के लिए कॉपी और बहीवास लेके आओ, कमंडल लेके आओ। वैसे महाप्रभु जैसे निकलते निकलते गए तो सर्वमठाचार्य इनको देख के महाप्रभु का विरह को सहन नहीं करते हुए बेहोश हो गए। और उधर अलरनाथ में चैतन्य महाप्रभु ऐसा कीर्तन करने लगे, नित्यानंद ने कहा कि ये जो कीर्तन जो है वो कीर्तन गांव गांव में इस प्रकार का प्रकाशन होगा। सभी लोग महाप्रभु का एक कीर्तन और नृत्य के जो दृश्य है उससे उनकी आंखों को हटा नहीं पा रहे थे, इतना अद्भुत कीर्तन चल रहा था। तो ऐसा कीर्तन वो कभी लोगों ने देखा नहीं था। तो ऐसा कीर्तन चल रहा था, नित्यानंदपुर ने सोचा कि इनको कैसे हटाया जाए, इनका इन लोगों को। सब लोगों को कहा कि महाप्रभु जो है इनका आराम करने का समय है, अब बाहर ही हो। महाप्रभु को एक घर के अंदर लेके गए, फिर उधर महाप्रभु भोजन ग्रहण करने का, फिर वापस सब लोग जमा हो गए। पूरा रात भर कीर्तन चला और इस प्रकार सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग लिए। तो समय चैतन्य महाप्रभु नेक्स्ट डे ऑल अनहैप्पी रिटर्न टू जगन्नाथपुरी, वापस सब लोग जगन्नाथपुरी की ओर निकल गए। महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए दक्षिण की ओर निकल पड़े, सिंह जैसा गर्जन करते हुए, जैसे सोना का पर्वत किस प्रकार नृत्य करता हुआ ऐसा दृश्य था उनका शरीर। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाई माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई माम। ये उच्चारण करते हुए महाप्रभु जैसे निकल पड़े। ये श्लोक पढ़ी पते चलिया गोर हरि, ये श्लोक पढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु चल पड़े। लोक देखी पते कहे बोलो हरि, केवल देखने मात्र से सभी लोग हरि हरि बोलने लगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जैसे निकलते निकलते आए, सेजन कृष्ण ग्राम में, जिस जिस ग्राम में चैतन्य महाप्रभु जाने लगे वो ग्राम में सब लोग कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे, सब लोग वैष्णव बन गए। कि ऐसा वैष्णव बन गए कि चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कीर्तन करते हुए गांव गांव में पहुंच के दक्षिण में सभी लोगों को उन्होंने आचार्य बनाया। सही ग्रामे लोक वैष्णव करिया, अन्य ग्रामे आसी तरह देखी वैष्णव है। जो लोग चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किए वो लोग अपने गांव में जाते हुए सब लोगों को वैष्णव बनाया। तो ऐसा चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक गांव में वो जा रहे थे, ताकि जिसमें चैतन्य महाप्रभु पूरा दक्षिण भारत की यात्रा में यही ऐसे ही कीर्तन करते हुए ने सबको वैष्णव बनाया। तो जो भी ये जो दक्षिण भारत की यात्रा की शुरुआत में जिस लीला का वर्णन हुआ है, महाप्रभु किस प्रकार कीर्तन करते हुए सबको वैष्णव बनाया, तो वो पूरा वर्णन पूरा दक्षिण भारत में उन्होंने यही शैली को उन्होंने रचाया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं आगे, कत कृष्ण प्रभु यदि बाह्य प्रकाशिला, कुर्मेर सेवक बहु सम्मान करिला। तो एक जगह पहुंचे जिसका नाम है कूर्म क्षेत्र। जैसे गुजरात में एक जगह पड़ता है पोरबंदर, वैसे ही आंध्रा में भी पोरबंदर करके जगह है, उसके नजदीक में ये कूर्म क्षेत्र है। तो आपको असत में इधर कूर्म क्षेत्र में जाना है तो सिंहाचलम श्रीकाकुलम करके एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। तो आप जगन्नाथपुरी से जब आएंगे नड्रास होते हुए या विजयवाड़ा होते हुए श्रीकाकुलम करके एक जगह स्टेशन आता है, उधर से 15-20 किलोमीटर दूर में एक कूर्म देव का विग्रह है, उधर गए। यही ग्राम में यह तन सही व्यवहार, एकता ने कैलासा कई भी आर बार। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कूर्म ब्राह्मण के साथ जिस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया उसी प्रकार हर गांव में उन्होंने व्यवहार किया। तो जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे, कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने निमंत्रण दिया। निमंत्रण करके बड़े आदर और प्रेम के साथ महाप्रभु को उन्होंने अच्छी तरह से बैठाया और उनका चरण सेवा किया, चरण अभिषेक किया, चरण जल को सबके परिवार वालों को छिड़काया और उनको अच्छा सा भोजन करा के तो उन्होंने महाप्रभु को आराम कराते हुए चरण सेवा करना शुरू किया। करते करते पूर्व ब्राह्मण निवेदन किया, यदि पद्म पद्म पुनः तुम्हार ब्रह्म दान करे। उन्होंने कहा कि ये जो चरण कमल है ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं वही चरण कमल से ही पाद पद्म साक्षात आयलम और करे। पूर्व ब्राह्मण ने कहा मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो चरण कमल ब्रह्मा जी भी ध्यान करते वो चरण कमल मेरा घर मेरे घर में आए तो मोरा भाग्य रस सीमा ना आए, मेरा भाग्य का कोई सीमा ही नहीं है। आज मोरा ये जो आज मेरा जो श्लाघ्य हैला जन्म कुल धना, मेरा जो जन्म कुल धन जितने भी है वो सब पवित्र हो गया है। मेरा एक निवेदन है, कृपा करें मेरा एक निवेदन सुनिए। मेरा एक निवेदन यह है कि मैं आपके संग में रहना चाहता हूँ। साथे ना परिया दुख का वही विषय तरंगे, क्योंकि आपके साथ में रहूंगा तो ये जो दुखों का विषय तरंग जो है वो मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं परेशान हो चुका हूँ घर गृहस्थी से, भौतिक संसार से, विषय तरंग से। तो हे प्रभु मेरे मुझे खाली आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके साथ चलूं। मैंने संसार को वैराग्य लेके मैं आपके साथ में चलना चाहता हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पूर्व ब्राह्मण से बात को सुना, महाप्रभु तुरंत उन्होंने कहा प्रभु कहे ऐसे बात कबू ना कही, इस प्रकार का बात कही मत कहो, तुम घर में रहो, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लईबा। तुम जहां हो घर में हो उदय लेके कृष्ण का नाम निरंतर लो। तुम बाद में उन्होंने आदेश दिया पूर्व ब्राह्मण को, आपने कहा यारदा को तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु तारे देश। जिन जिन को देखोगे तुम कृष्ण का उपदेश दो और मेरी आज्ञा है तुम गुरु बनो। पिछली बार भी उसके ऊपर चर्चा किए थे। हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण स्वामीनारायण संघ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जितने भी गुरु वर्ग हैं वो चाहते हैं कि उनके शिष्य गुरु बने। प्रभुपाद जी सोचते थे और जितने भी हमारे आचार्य वर्ग है उनका आदेश क्या है, चैतन्य महाप्रभु आदेश क्या है आप गुरु बनो। अन्य लोग जितने भी तथाकथित जो गुरु है वो शिष्यों को ढूंढते हैं, जो हमारी संस्था है गुरुओं को ढूंढते हैं। हम बोलते हैं कि आप गुरु बनो, ये महाप्रभु का आदेश है। तो कबू ना बोली बात, ये तुम्हारा इस प्रकार बोलने की कोई बोलो मत, क्योंकि अगर तुम मेरा आज्ञा को पालन करोगे, क्या है वो आज्ञा, निरंतर हरिनाम लोगे और जिनको देखोगे उनको कृष्ण उपदेश देते रहो, प्रचार करोगे, तो क्या होगा, तुम मेरे साथ आने की बात कहते हो मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा। ये महाप्रभु का आदेश है, महाप्रभु का ये कहना ये है मेरे साथ बताओ, तुम ऐसा प्रचार करो कि क्या होगा मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा। असल आप चैतन्य महाप्रभु के साथ भी जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे, इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप प्रचार करोगे चैतन्य महाप्रभु आपके साथ में चलेंगे, ये भगवान का विशेष कृपा है। इसके हम देखते कभी कभी भक्त लोग प्रचार करने जाते हैं तो कभी भी ऐसा लगता है कि कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हर चीज आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है, खाली वो खाली प्रचार करने का संकल्प लेके मैदान में उतरने मात्र से महाप्रभु रहते हैं, पीछे पीछे से शक्ति देते हैं, अपने आप शक्ति देते हैं। तो ये विशेषता है। तो महाप्रभु इस प्रकार जो कूर्म ब्राह्मण को उपदेश महाप्रभु ने दिया, जिन जिन के घर में महाप्रभु दक्षिण भारत में गए उन सारे घरों में केवल यही कार्य किए। इसलिए अतएव यहां कलिनो करिया विस्तार, यही मत जाने व प्रभु सर्वत्र व्यवहार, सर्वत्र व्यवहार। जो कूर्म ब्राह्मण के घर में जो भी प्रसंग हुआ है वही प्रसंग चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्र व्यवहार हर जगह किया है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे कूर्म ब्राह्मण के घर से निकल के आगे निकल पड़े और उन्होंने कूर्म ब्राह्मण कहा कि आप जाओ घर में रहो और दो आदेश है, निरंतर हरिनाम जप करो और गीता भागवत पढ़ो और पढ़ाओ, यही हमारा कार्य है। अस्तित्व में कोई पूछे कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है, आदेश यही है बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण का नाम लो और करो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण। भजो कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का सेवा करो। कृष्ण है भागवत के रूप में, भागवत का सेवा करो। तो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तब बोलोगे मैं तो क्या प्रचार करूंगा, क्या जरूरत है, मैं तो कृष्ण का नाम लेता हूं, भजन अपना करता हूं। लेकिन महाप्रभु का क्या है? करो कृष्ण शिक्षा। इसका अर्थ क्या है? लोगों को कृष्ण का शिक्षा प्रदान करो, गीता भागवत की शिक्षा प्रदान करो। क्योंकि जब आप लोगों को कृष्ण के बारे में सुनाओगे, लोगों को कृष्ण शिक्षा प्रदान करना शुरू करोगे, तो क्या होगा कि कृष्ण नाम लेना आसान हो जाता है, भगवान का भजन करना आसान होता है। कुछ तो कहते हैं प्रभु जी प्रचार करें या भजन करें, लेकिन उनको मालूम नहीं है जितना भजन करोगे उतना अच्छा प्रचार करोगे, जितना अच्छा प्रचार करोगे उतना अच्छा भजन होगा। ये दोनों भजन और प्रचार जो है, ये दोनों को विरोधात्मक चीज नहीं है। जो इन दोनों में विरोध देखता है वो असल में वो महामूर्ख है, वो ना भजन हो रहा है ना प्रचार करता है। वो जब प्रचार करने की बात करेंगे तो वो भजन की बात करेगा, जब भजन की बात करेंगे वो प्रचार की बात करेगा, यानी दोनों नहीं करना चाहता है। तो अगर सच में कोई व्यक्ति ये गौड़ीय सिद्धांत को समझा है, वो इन दोनों में कोई विरोधाभास को नहीं देखता है। प्रचार भजन के लिए है, भजन प्रचार के लिए। तो ये कहना कि मैं तो भजनानंदी बनना चाहता हूं, भजनानंदी तभी बन पाओगे जब आपने गोष्ठी बराबर किया है। गोष्ठी तभी हो पाएगा जब भजन बराबर होगा। ये दोनों अलग वस्तु नहीं है, दोनों अस्तित्व में एक ही वस्तु, एक ही चीज है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? करो कृष्ण शिक्षा और साथ साथ में बोलो कृष्ण। दोनों कहा उन्होंने, साथ साथ में कृष्ण सेवा करो। यही जो उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने सारे घरों में, जिन घरों में महाप्रभु गए, उन सारे घरों में चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया। खास करके नित्यानंद प्रभु का जो दक्षिण भारत की लीला है उसमें एक अद्भुत बात है। ये जो नित्यानंद प्रभु प्रायः इतने सारे घरों में गए दक्षिण भारत में, ऐसा वर्णन आता है केरल प्रांत में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर नित्यानंद प्रभु गए नहीं है। यानी केरल में कितना घर होगा? प्रत्येक घर में, हरेक घर में नित्यानंद प्रभु गए। तो वह चैतन्य महाप्रभु प्राय जहां जहां जाया करते थे, हाँ जो भी घर में वो रुकते थे ब्राह्मण के घर में, उन सब जगह केवल यही उन्होंने उपदेश दिया। तो एक उस समय एक विप्र था जिसका नाम था वासुदेव विप्र, वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। वो कुष्ठ रोग की वजह से वो जल्दी महाप्रभु से मिलने आ नहीं पा रहा। तो जैसे महाप्रभु पूर्व ब्राह्मण के घर से निकल पड़े, तो वासुदेव विप्र को मालूम पड़ा पूर्व ब्राह्मण के घर में चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए वो जितना हो सके जल्दी आ रहे थे। और जैसे पूर्व ब्राह्मण के घर में पहुंचे, उनको मालूम पड़ा कि महाप्रभु निकल पड़े। और जैसे उनको मालूम पड़ा महाप्रभु निकल पड़े, विरह के सहन नहीं करते, वो बेहोश हो गए। जैसे बेहोश हो गए तो महाप्रभु परमात्मा है वो जानते हैं, उनको मालूम है कि वासुदेव विप्र मेरे विरह में खड़प रहा है। इससे महाप्रभु वापस आए। अब देखिए भक्त के मन में इतना भक्ति है, अगर हो विरह की भावना हो, भगवान का जो प्लान है उसको ही परिवर्तन कर सकते, उतना शक्ति भक्त की भक्ति के अंदर है। तो महाप्रभु वापस आए, जैसे वापस आए वासुदेव विप्र उधर ऐसे बेहोश पड़े, उनका पूरा शरीर में कुष्ठ रोग था, उनका जो चमड़ी जो है वो कभी नीचे गिर पड़ता था, वो कुष्ठ रोग की वजह से जो कीड़े खा खा के वो ढीला पड़ जाता, नीचे गिर पड़ता था। लेकिन वासुदेव विप्र के अंदर इतनी दया की भावना है, वो उसको उठा के वापस अपनी चमड़ी के शरीर को रखते थे। उनको दया रहती थी अगर ये कीड़े अगर नीचे गिर पड़ेंगे तो उनको उनका आहार कहां से मिलेगा, उनको इतना चिंता था। इससे चैतन्य वासुदेव अपना वापस ये जो कीड़े हैं वापस उनके शरीर के पास लगा देते थे। इससे चैतन्य महाप्रभु जब वासुदेव विप्र के पास आए तो उन्होंने तुरंत क्या किया, ऐसा प्रभु रो कृपा थे कि तुरंत वासुदेव विप्र ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। और जैसे आलिंगन किया वासुदेव विप्र का पूरा शरीर ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल नौजवान सुंदर हो गया। ये देखते ही एकदम सब कुछ चमत्कारिक हो गए। प्रभु रस स्पर्श दुख संग कुष्ठ दूर गेला, ये कुष्ठ रोग जो है पूरा दूर चला गया। और आनंद सहित अंग सुंदर हैला, ये कुष्ठ रोग जो पीड़ित वासुदेव विप्र जो है उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया और पूरा अंग सुंदर हो गया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है चैतन्य महाप्रभु वृत्यार्थिहं प्रातपाल भवाद्दीपोतम। वृत्यार्थिहं, वृत्यार्थी का अर्थ क्या है? भक्तों का जो विरह है या दुख है उसको उसको निकालने वाले, उसको मिटाने वाले हैं। वैसे कृष्ण ने क्या किया, सारे भक्तों को दुखी दिया है कि नहीं? आप देखिए कृष्ण लीला में सारे जितने भी भक्त सब लोग दुखी है कि नहीं? पांडव दुखी हुए, गोपियां दुखी हुई, और यशोदा माई भी बहुत दुखी थी। ऐसी लीला है, लेकिन अंतिम तो परेशान तो किया कि नहीं? हाँ, लेकिन भले वो आध्यात्मिक और दिव्य आनंद का दुख है अलग बात है, लेकिन महाप्रभु का लीला ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है भक्तों को वो विरह दिए, लेकिन वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो विरह स्वरूप में आए सब क्या किए? अभी वासुदेव विप्र वो छलके छलके आ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्लान चेंज करके वापस आए। ये महाप्रभु का विशेष अनुकंपा है। इससे भागवत में कहा गया है वृत्त्यार्थिहन, वृत्तियों का भक्तों का जो अर्थी यानी दुख है उसको नाश करने वाले हैं। ये देखिए प्रभु का कृपा देखी तरण विस्मित होइला मन, प्रभु का कृपा देखिए सब लोग विस्मित हो गए। श्लोक पड़ी प्राय धरी करिय स्थवन, तब तुरंत वासुदेव विप्र जो है एक श्लोक उच्चारण करते जो सुदामा विप्र ने उच्चारण किया था, ने कहा कि सुदामा विप्र कहते हैं कि असल में कौन हूँ, आप कौन है? वासुदेव विप्र वही सुदामा की भावना में कहते हैं कि हे भगवान मैं कौन हूँ? एक तुच्छ एक लेपर, मतलब एक कुष्ठ रोग से पीड़ित, कोई मुझे देखने ही घृणा लगता है। देखिए आप तीनों लोगों के ईश्वर, आपने मुझे आके आलिंगन किया, ये आपका विशेष कृपा है। इस प्रकार अनेकों श्लोकों को श्रवण किया श्री चैतन्य महाप्रभु और वासुदेव विप्र ने चैतन्य महाप्रभु का श्रवण किया और महाप्रभु ने का चरण पड़े। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वासुदेव विप्र का उद्धार करते हुए नागे निकल पड़े। तो किस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार किए उसका वर्णन करने के बाद चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की ओर आगे निकल पड़े। वासुदेव विप्र का उद्धार करने के वजह से चैतन्य महाप्रभु का महा नाम पड़ा वासुदेवामृत प्रदा। अभी हम लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम पे भक्त का नाम रखते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है भक्त के नाम पे भगवान का नाम हो जाता है। इससे चैतन्य महाप्रभु का नाम हो गया वासुदेव विप्र, वासुदेव अमृत प्र, जिन्होंने वासुदेव को अमृत प्रदान किया, उनकी कृपा प्रदान किया। तो चैतन्य लीलार आदि अंत नहीं जानी, तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु का लीला इतना अद्भुत इतना अपार है, उनका आदि क्या है अंत क्या है मैं जानता नहीं हूं। से लिखी ये महान तरह मुखे सुनी, जो भी मैं महान लोगों के मुख से सुना हो उसको मैं लिख रहा हूं। इति अपराध मोर न हैले भक्तगण, नैसे में आप ये मत सोचिए कि मैंने अपराध कर रहा हूं, केवल मेरी एक तुम्हारा सवार चरण मोर एकांत शरण। कृष्णदास इतना दयनीय भावना से वर्णन करते हैं कि मैं सारे भक्तों के चरण में गिर पड़ता हूं, आपके चरण धूली को स्पर्श करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मोर एकांत शरण, क्योंकि आपका चरण धूलि का शरण ही मेरा एकांत शरण है। इस प्रकार रूप रघुनाथ पदे करके ये जो अध्याय है रूप रघुनाथ के शरण लेते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आदि लीला मध्य लीला का जो सातवां अध्याय समाप्त करते हैं। अभी आठवां अध्याय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का संवाद है। महाप्रभु रामानंद राय का संवाद इतना महान है कि चैतन्य महाप्रभु इतना हद तक सोचने लगे जो मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं कह नहीं सकता हूं, वो राय रामानंद कह सकता है। यानी भगवान भी सोचते हैं ये विषय जो जिसका चर्चा मैं स्वयं अपने मुख से कह नहीं सकता हूं, वैसा चर्चा जो है मैं कहना चाहता, मैं रामानंद राय ही कह सकता है। रामानंद राय का महिमा इतना महान है, राय रामानंद राय। आगे भी वर्णन आता है जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिले प्रयाग में, तो रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा दिए? वही शिक्षा दिए जो रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने सुना था। भले ही चैतन्य महाप्रभु ने ही रामानंद राय को शक्ति प्रदान किया जिसके द्वारा वो कृष्ण तत्व राधा तत्व को वर्णन कर सके, लेकिन वही शिक्षा जो रामानंद राय के मुख से चैतन्य महाप्रभु ने सुना, वही शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रदान किया। इसे पता लगता है कि रामानंद संवाद जितने भी संवाद हुए चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी के पास हो, सनातन गोस्वामी के साथ, सारमुंडाचार्य के साथ, प्रकाश सर के साथ जितने भी संवाद हुए हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है रामानंद संवाद, क्योंकि रामानंद संवाद जो है प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन तत्व को निरूपण करने वाला है। चैतन्य महाप्रभु के जो आने से पहले वेद थे, सारे शास्त्र थे, लेकिन उन सारे शास्त्रों का ठीक ठाक निर्णय कोई नहीं कर पा रहा था। भले ही चारों वैष्णव आचार्य आए, वो भी वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत किए, लेकिन अमुक अमुक जो रस तत्व की जो बातें हैं उसके ऊपर सही निर्णय प्रकाशित नहीं किया है। ये सारे शास्त्रों का वास्तविक निर्णय जजमेंट वो तभी हुआ जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। मान लीजिए कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर बहुत सारे लॉ बुक्स है, जो संविधान के जो ग्रंथ है उसके ऊपर कुछ लॉयर सही आर्ग्यू करते हैं और कुछ लॉयर जो है गलत आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इतिहास में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे वैसे आचार्य आए हैं जो शंकराचार्य के अनुगामी और अन्य मत के जो आचार्य आए हैं, वो सब लोगों ने क्या किया, गलत आर्ग्यूमेंट किया है शास्त्रों के ऊपर। और कुछ आचार्य आए हैं जो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इम्बारकाचार्य, ये सब लोगों ने सही आर्ग्यूमेंट किया है, लेकिन आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट चलता गया, वाद विवाद संवाद चलता गया, शास्त्रार्थ चलता गया, लेकिन जजमेंट तभी हुआ जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं। क्योंकि एक बार जजमेंट हो जाता है उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, आफ्टर जजमेंट देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। इसलिए सारे शास्त्रों में अनेकों अनेकों बातों के ऊपर वाद विवाद सब चलता था, कुछ लोग सही बोलते थे, कुछ लोग गलत बोलते थे, कुछ लोग अपने सही सिद्धांत को स्थापना करने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क इस्तेमाल करते थे, कुछ लोग अपनी गलत सिद्धांत को स्थापना करने के लिए तर्क वितर्क इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये सब तभी तक चलेगा जब तक जजमेंट ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु आकर उन्होंने जजमेंट दे दिया। तो कैसे जजमेंट दिया, उन्होंने कहा सारे शास्त्रों में केवल तीन ही बातें हैं, क्या है वो, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ने कहा ये संबंध जो है, संबंध ज्ञान क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये बात को अन्य आचार्य ने कहा लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं कहा जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो जजमेंट दे गया, हमारा संबंध ज्ञान क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं। और अभिधेय क्या है, श्रवण कीर्तन, भागवत सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हुए श्रवण कीर्तन करना, भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन का, लीला का गुणगान करना, कीर्तन करना, यही हमारा विधि है, अभिधेय है। और प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही प्रयोजन है। तीन बातें श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना स्पष्ट रूप में कहा कि एक बच्चा भी इन सिद्धांत को जान सकता है। इसलिए आप जाके देखिए, बड़े बड़े विद्वान पंडितों से मिलिएगा, अन्य संप्रदाय के, भले ही वैष्णव संप्रदाय भी क्यों ना हो, वो इतना सरल और स्पष्ट रूप में नहीं कह पाएंगे जितना हमारे बच्चों के प्रोग्राम में आने वाले बच्चे ये सही बात है, इट इज ट्रूथ। आप कोई बच्चे से पूछिएगा भगवान कौन है, तो तुरंत हमारे प्रोग्राम आने वाला बच्चा है कृष्ण भगवान है। तो उनको प्रसन्न करना है, आपको क्या करना है, हरे कृष्ण जप करना है, आपको क्या प्राप्त करना है, उनको प्रेम प्राप्त करना है, हर एक बच्चा बच्चा बोलेगा। लेकिन अभी आप कोई बड़े विद्वान, संस्कृत के विद्वान उनसे पूछिए तो बोलेगा भगवान कौन है, तो बड़ी बात है, ऐसी थोड़ी सरलता से बोलने वाली बात है, उसको बहुत जानना पड़ता है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, उसकी व्याख्या अनंत है, ऐसे ऐसे नहीं बोला जाता उसको, बड़े बड़े बातें कहेंगे लेकिन सीधा सीधा बात नहीं कह पाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने प्रत्यक्ष रूप में ये एक लीला में उन्होंने बताया था। एक बार एक ब्राह्मणों के साथ बैठे थे, बड़े बड़े वेदों के श्लोक उच्चारण कर रहे थे। तब प्रभुपाद ने उनसे पूछा, ठीक है आप बड़े बड़े जानते विद्वान हो, लेकिन बताइए कि भगवान कौन है। सब लोगों ने भगवान कौन है, ऐसे थोड़ी ना सरल से बोलने वाली बात है, सब एक दूसरे से देख रहे थे। तो उस समय एक सरस्वती करके एक छोटी सी बालिका थी, तो उस समय में शी इज द फर्स्ट बेबी बॉर्न इन अवर मूवमेंट, हमारे संस्था में सबसे पहला जो बच्ची का जन्म हुआ है। तो उनको बुलाए प्रभुपाद जी, उधर खेल रही थी। प्रभुपाद जी कहा, रसगुल्ला था, टेल मी हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट। तो तुरंत बच्ची ने कहा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट। तो प्रभुपाद रसगुल्ला दिया, वो चली गई। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप जिसके बारे में बड़ा वाद विवाद करते हो, हमारी संस्था की छोटी बालिका जानती है, बच्ची जानती है ये अस्तित्व में महाप्रभु कृपा है, ये महाप्रभु नहीं तो नहीं हो सकता। इतना स्पष्ट रूप में सिद्धांत को पेश करना, सही तरीके से स्पष्ट रूप में, कोई इधर उधर नहीं, कोई आगे पीछे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कभी कुछ कहा कभी और कुछ कहा, इतना स्पष्ट रूप में तभी हो पाया जब चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये जो संबंध अभिधेय प्रयोजन में, ये प्रयोजन तत्व का जो ज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु ने सारमठाचार्य के संवाद में उन्होंने सुनाए जो महाप्रभु जो है इधर वासुदेव विप्र को कुरु ब्राह्मण को धार करके और दक्षिण की ओर निकल के आगे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे कहां? वैजाग विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के नजदीक में उससे पास 5 किलोमीटर दूर में एक बड़ा पहाड़ है, ऐसा कहा जाता है उस पहाड़ के ऊपर से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नीचे फेंका था। और उस समय हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव प्रकट होकर प्रहलाद जी को बचाए थे, तब से नरसिंहदेव का विग्रह है। अभी उधर सिंहाचलम में गए, उस जगह का नाम है शिलाम सिंहाचलम, और उधर नरसिंहदेव इतने क्रोधित रहते हैं कि उनको रोज शांत करने के लिए रोज चंदन लगाना पड़ता है। उनको पुजारियों को इतना डर लगता है कि कल का चंदन निकाल दिया तो फिर वापस गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, उनको सब जला देंगे, इसलिए कल का चंदन को निकालते नहीं है। जैसे मान लीजिए विग्रह को जब एक दिन चंदन लगाते हैं, अगला दिन जो वो चंदन साफ करके नया चंदन लगाते हैं, है कि नहीं? लेकिन नाहोबेड़ा में ऐसा, सॉरी इधर सिंहाचलम में ऐसा नहीं करते। सिंहाचल में बहुत सारा चंदन लगाया, अगला दिन वापस चंदन लगाएंगे, पहले के चंदन नहीं निकालेंगे, खाली साल में एक बार पूरा चंदन निकालेंगे तो आपको पूरा नरसिंहदेव का जो पूरा विग्रह है साक्षात विश्व रूप में दर्शन होगा, बाकी सब दिनों में आपको चंदन का ढेर नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा। तो महाप्रभु उधर गए और धूप कीर्तन किए, नरसिंह पराम उच्चारण किए, उग्रोपिनुग्रेवायम सुभक्ता नाम केशरी केशरी सुपूता नाम उग्र अन्य नाम उग्र विक्रम, और ऐसी नरसिम्हा जय नरसिम्हा ये सब जितने भी नरसिम्हा स्तुति है वो सब किए। तुरंत अगर एक ब्राह्मण आए, महाप्रभु को आदर किए, सत्कार किए और उनको प्रसाद वगैरह इत्यादि दिया, और चैतन्य महाप्रभु उधर रात निकाले, और श्री चैतन्य महाप्रभु को मालूम नहीं था क्या, क्योंकि हमेशा कीर्तन में बेहोश रहते थे, मदमत रहते थे, इसलिए कौन से डायरेक्शन में जा रहे, कहां दिन है, कौन सा रात है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार पहले वर्णन किया गया है उसी प्रकार हर जगह कीर्तन करते हुए वो और दक्षिण की ओर निकल पड़े। जैसे और वैजाग से नीचे आएंगे एक जगह है जिसका नाम है राजमंड्री, जिसको राजमहेंद्री भी कहा जाता है। राजमंड्री, राजमंड्री के नजदीक में उस बाज में गोदावरी के उस पार में एक गांव है जिसका नाम है खोवूर। श्री चैतन्य महाप्रभु उधर पहुंचे, जैसे गोदावरी पहुंचे वैसे राजमंड्री जो है वो बहुत पवित्र स्थान है, वो आंध्र प्रदेश में वो विद्वानों का निवास स्थान है, ऐसा कहा जाता है। उधर जो है देवता लोग निवास करते हैं, देवता लोग प्राय आया करते हैं उधर, और उधर के जो ब्राह्मणों की समाज में जो वेदों की चर्चा होती है, वेदों को मंत्र का उच्चारण होता है, उधर देवता लोग भी आके बैठ के सुनना चाहते हैं, क्योंकि उधर के इतने पवित्र ब्राह्मण है, उतने पवित्र तरीके से वो वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हैं। और साथ साथ में ऐसा वर्णन किया जाता है कि वैदिक मंत्रों की प्रसन्नता की वजह से या उनकी उच्चारण की वजह से उधर का जो गोदावरी का बहाव है वो बहाव ही भाव की वजह से कुछ आवाज आता है लहर में, वो आवाज ही वैदिक मंत्र है। ऐसा उधर के इतिहास में, उधर के स्थल पुराण में वर्णन किया गया है। ये गोदावरी का विशेषता है, जिनको गौतमी गंगा कहा जाता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु उधर गए, तुरंत ये गोदावरी को देखो उनको वृंदावन का स्मरण हुआ, तो उधर श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया, स्नान करके एक जगह बैठे थे। जब एक जगह बैठे श्री चैतन्य महाप्रभु, दूर से उन्होंने देखा कि एक पालकी में एक व्यक्ति बैठ के आ रहे हैं और पीछे सारे ब्राह्मण जो वैदिक मंत्रों को उच्चारण करके आ रहे हैं। जैसे दूर से महाप्रभु देख के समझ गए ये रामानंद राय है, उनका मन तो भाग रहा था मां तुरंत जाओ रामानंद राय को जाके आलिंगन करो, लेकिन महाप्रभु अपने आप को रोक रहे थे। तो तुमने सोचा थी किस प्रकार मैं उनको आलिंगन करूं, लेकिन मन तो चाहता था मैं तुरंत जाऊं और उनको आलिंगन करूं, लेकिन महाप्रभु अपने आप को संभाल रहे थे क्योंकि वो सन्यासी है। उधर तो कोई एक पालकी में एक राजा है, पालकी में आने वाला तो राजा होता है, मैं जाके कैसे आलिंगन करूं, ये जो बात है महाप्रभु को रोक रहा था। तो बाद में दूर से रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को देख के उनको देखा कि ये कौन है अद्भुत सन्यासी, ये तो हजारों सूर्य के भांति उनका शरीर से चमक उत्पन्न हो रहा है, और ये तो उनका एक काषाय वस्त्र को धारण किए है, गेरो वस्त्र को धारण किए है, और उनका पूरा सुंदर आंख है, और उनका शरीर इतना सुंदर बना हुआ है। और देख के सोचने लगे कि मैं जाके उनके पास जाके मिलना चाहता हूं। रामानंद राय तुरंत पालकी से उतरे और इधर उनका कुछ होश नहीं था, सीधा महाप्रभु के पास जाके दंडवत किए। जैसे महाप्रभु के पास दंडवत किए, रामानंद राय को महाप्रभु ने उठाया, उठा के तो महाप्रभु बहुत उत्सुक थे रामानंद राय को आलिंगन करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक टोक के पूछा कि आप ही रामानंद राय हो। महाप्रभु ने पूछा तो रामानंद राय कहा कि हाँ हाँ मैं आपका एक सेवक हूँ, मैं एक शूद्र जाति का हूँ। जैसे महाप्रभु ने इस बात को सुना रामानंद राय, उन्होंने ये बात ही सुना मैं शूद्र जाति का, वो सब महाप्रभु ने तुरंत रामानंद राय को आलिंगन किया। आलिंगन करके उनके आंखों से प्रेम का आंसू बहने लगे। सब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे के शरीर में एकदम पिघल गए और उनके रामानंद राय की आंखों से भी प्रेम के आंसू उत्पन्न होने लगे। लेकिन फिर भी रामानंद राय अपने आप को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके मुख से कृष्ण का नाम ऐसे उच्चारण हो रहा था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा परिस्थिति में तो एक दूसरे में ऐसा आलिंगन करके एकदम बिल्कुल प्रेम में खो गए थे। तब सारे ब्राह्मण सोचने लगे ये क्या हो गया, ये तो सन्यासी है, सन्यासी तो ऐसा शूद्रों को थोड़ी ना आलिंगन किया था, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये तो राजा है, ये रो क्या रहा है इधर इस प्रकार, ये तो भावुकता जैसा, राजाओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, ये क्या हो रहा है। तब महाप्रभु को रामानंद ने देखा ये ब्राह्मण जो है ये बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि अस्तित्व में प्रेम क्या है वो ये ब्राह्मण क्या समझ सकते हैं, कृष्ण प्रेम क्या होता है ब्राह्मण नहीं समझ सकते, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है बड़े वैदिक ब्राह्मण थे, ये वेदों के उच्चारण में बड़े पटु थे, विद्वान थे, सब कुछ थे, लेकिन कृष्ण का जो प्रेम लक्षण है उनका वो ज्ञान था, उनका वो ज्ञान नहीं था। तो ये कृष्ण प्रेम ये यही सोच रहे थे कि एक सन्यासी तो शूद्रों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। खास करके आप दक्षिण भारत में जाएंगे जो अन्य संप्रदाय के एकदम कड़क सन्यासी होते हैं, वो किसी को स्पर्श नहीं करते, वो चलते भी तो वो ऐसे हर जगह पर नहीं चलेंगे, चलना पड़ता है तो पहले उधर जल डालेंगे थोड़ा सा, उसको मंत्रों से आचमन करेंगे, बाद में जहां जल गिरा शुद्ध हुआ उधर पैर रखेंगे, बाद में दूसरा पैर रखने के लिए फिर वापस उधर शुद्ध करेंगे, ऐसे चलते चलते जाएंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, अपने शिष्यों को भी अगर कुछ प्रसाद देना है ऐसा देंगे ताकि मेरा स्पर्श ना हो जाए, अगर उनको संन्यास डंडा भी अगर किसी को कुछ समय के लिए रख देना है किसी को वैसे छोड़ेंगे डंडा हवा में तो वो दूसरा पकड़ेगा। हाँ स्पर्श दोष को बहुत ज्यादा मान्यता दिया जाता है। इधर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उधर अभी आए और नहाए भी नहीं, महाप्रभु तो नहा के बैठे थे, रामानंद राय ऐसे पालकी में आए तुरंत जाकर उनको आलिंगन किया। तो ये देख के ब्राह्मण चमत्कृत हो गए। दूसरी बात है रामानंद राय कोई और नहीं था, ये गजपति राजा है, गजपति राजा वैसे ये जो प्रताप रुद्र है भले ही जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, प्रताप रुद्र राजा गजपति राजा वो ओडिशा के राजा नहीं थे, एक्चुअली वो आंध्रा के राजा थे, काकतीय राजा, लेकिन उनका जो भाव जगन्नाथ जी के प्रति इतना तीव्र है कि वो प्राय जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, जैसे गणपति देव रुद्रमदेव रुद्रमदेवी और उनके जो प्रताप रुद्र है ये इतने बड़े बड़े राजा है, गजपति राजा है, तो वो ओडिशा जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए मंदिर का सेवा करने के लिए उधर रहा करते थे और अलग अलग जगह अपने मिनिस्टर को अपॉइंट करते थे। उस समय गजपति राजाओं के अंतर्गत प्रताप रुद्र के समय पूरा आंध्रा का जो राज्य है वो तमिलनाडु को भी वो आक्रमण करके रह गए थे। तो ये तमिलनाडु यानी मद्रास प्रोविंस को देखभाल करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के समय में प्रताप रुद्र ने रामानंद राय को अपॉइंट किया था। रामानंद राय का जो संभालने का जो ऑफिस जो था वो राज कार्यकलाप सब था वो मद्रास में था, चेन्नई में था, लेकिन उस समय उधर गोदावरी तट पे पहुंचे थे क्योंकि गोदावरी का उस समय पुष्कर चल रहे थे, पुष्कर में प्राय सभी लोग आके स्नान करते हैं। तो जितने महाप्रभु जब पहुंचे उस समय उधर गोदावरी में पुष्कर था, तो तब महाप्रभु का इधर रामानंद राय के साथ संवाद हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि यही महाराजा महापंडित महापंडित गंभीर संन्यासीर स्पर्शमत्त हैला स्थिर। ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गंभीर है, राजा है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखा रामानंद राय इज द गवर्नर ऑफ मद्रास, ए हाईली लर्नड एंड ग्रेव पर्सन। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखते हैं इज द गवर्नर ऑफ मद्रास। तो वैसे तो ये जो गोदावरी है मद्रास से प्राय बहुत दूर है, लेकिन उधर कैसे आए थे, क्योंकि वो पुष्कर था उस समय में इसलिए आए थे। तो ये जो सोचने लगे तो गंभीर होना चाहिए, ये सन्यासी का स्पर्श करने मात्र से इनको क्या हो गया, ये पागल जैसा हो गया, मत तो हो अस्थिर, हाँ इनका पूरा अस्थिर हो गया। ये मत विप्रगण भावे मने मने, अपने मन में इस प्रकार सोचने लगे, विलज्जित लोक देखी प्रभुर खोल संवरणे, तो इन ब्राह्मणों को देखे थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा लज्जा हुई और उन्होंने रामानंद राय को छोड़ दिया। और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए रामानंद को बोलने लगे, हे रामानंद, सारमठाचार्य ने मुझे कहा था कि आपके महान गुणों के विषय मुझे कहा था, तो इसलिए मैं बहुत प्रयास कर रहा था, दक्षिण जाऊंगा, मैं कहां मिलूंगा, लेकिन अनायास से आप मुझे प्राप्त हुए हो। मैं समझता हूं कि ये कृष्ण की कृपा से मेरा आपके साथ मुलाकात हुआ है। तब रामानंद राय ने कहा, सारमठाचार्य जो है वो वो मुझे एक सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, और ये स्वभाव है, एक मालिक होता है ना, वो सामने सामने मेरा गुणगान नहीं करते, लेकिन उनका स्वभाव है, मेरा प्रभु है ना सारमठाचार्य, बड़े विद्वान है, मेरे प्रभु है, उसकी वजह से मेरे अनुपस्थिति में मेरे पास कोई गुण नहीं होने पर भी मेरा गुणगान किया, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कृपा से मुझे आपका संगति प्राप्त हुआ। तो मैं एक शुद्ध जाति का हूँ, शुद्ध जाति होने पर भी आपका संगति प्राप्त हुआ, आपका स्पर्श प्राप्त हुआ, ये मेरा बड़ा परम सौभाग्य है। तो मैं सुना कि आपने सारमठाचार्य के ऊपर विशेष कृपा किया, असल में मैं एक तुच्छ व्यक्ति होने पर भी आपने मुझे स्पर्श किया, आप तो साक्षात भगवान हो, कहां तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, आप कहां हो, आप तो साक्षात ईश्वर नारायण हो, कहां हुई, मैं कौन हूं, राजसेवी विषये शुद्राधम, राजसेवी राजा का सेवक हूं, एक शूद्र हो, अधम हो, शुद्राधम हूं, और मोर स्पर्श न कैल गृह वेद भाव, अगर कोई मुझे स्पर्श करता है कोई व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता है, मोर दर्शन तुम्हा वेदन वेद निषिद्ध, वेदों में मेरा दर्शन करने का भी निषिद्ध किया गया है, तुम्हारा कृपया निंदाय कर्म, मैं बहुत सारे निंदन कर्म करता हूँ, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हारा मर्म, आप तो साक्षात ईश्वर हो, कौन जानता आपका मर्म, कोई नहीं जान सकता है, आवे निस्तारित है तुम्हारा आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन, आप परम दयालु पतित पावन, आप केवल मुझे उद्धार करने के लिए आप आए हो, और महंत सवारा यही तर्जिते पामर निज कार्य नहीं तबु याना तवेग, ये जो है आपका कार्य ऐसा है, जो एकदम बिल्कुल अदम पामर होते हैं वैसे लोगों का उद्धार करना ही आपका एक कार्य होता है, ये महान लोगों का कार्य होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा नम्रता स्वीकार किए। और जैसे इस प्रकार रामानंद राय ने अपना नम्रता को व्यक्त किया, तब देखिए चैतन्य महाप्रभु वापस रामानंद राय गुणगान करते हैं, उन्होंने कहा प्रभु 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 को है तुम्हें महाभागवतोत्तम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप तो महाभागवतोत्तम हो, तुम्हारे दर्शन सबार द्वारे फैला मन, प्रस्तुत में ये जो केवल आपका दर्शन मात्र करने मात्र से सभी लोगों का हृदय पिघल जाएगा, अन्य रखी कथा मी मायावादी सन्यासी, अभी दूसरों की क्या कहना, दूसरों की बात क्या कहना, मैं अपने बारे में कहता था तो मैं तो मायावादी सन्यासी था, अन्य रखी कथा मी मायावादी सन्यासी आमी, हाँ तुम्हारा स्पर्श है कृष्ण प्रेम भासी, अस्तित्व में आपका स्पर्श करने मात्र से मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, ये जाने कति न मोरा हृदय शोभिते सार्वभौम कैल तुम्हारा मिलते, सारमठाचार्य मुझे मालूम, सारमठाचार्य को मालूम था अस्तित्व में सारमठाचार्य का मेरे ऊपर इतना कृपा है, तो अस्तित्व में उन्होंने कहा आप जाके रामानंद राय से मिलोगे उनका स्पर्श करोगे उनका संगति मात्र से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, अभी मैं जानता हूं अभी सारमठाचार्य का मेरे ऊपर बहुत कृपा है, अभी गौड़ीय वैष्णव मतलब ये है, एक दूसरे का गुणगान करना और नम्रता को व्यक्त करना, इस प्रकार का जो प्रेम का व्यवहार जब देखते हैं कि महाप्रभु कौन है, साक्षात भगवान रामानंद राय कौन है, जिनके मुख से भगवान ने प्रयोजन तत्व को प्रकाशित किया, और इन दोनों के बीच में संवाद देखिए कितना महान है, और इधर निमंत्रण मन करे वैष्णव जनिया रामानंद कहे प्रभु इष्ट सिया, इन लोगों का व्यवहार देख के सभी ब्राह्मण ने सोचा कि अरे ये बड़ा महान वैष्णव है, तो तब रामानंद ने कहा कि मैं आपके मुख से मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, आया, मैं वापस तुमको मिलना चाहूंगा, ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद ने कहा आई वॉन्ट टू हियर, मैं आपके मुख से कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब रामानंद ने कहा राय तो आई लो दीप अमर शोधित दर्शन मात्र शुद्ध नही मोर दुष्ट चित्ते दिन पंच शत रही करिल मर्जन मर्जन तबे शुद्ध हो मोर ई दुष्ट मन। पावन रामानंद कहते हैं आप आए हो कुछ 5-10 दिन रहिए और ये जो दुष्ट मन है मेरा उनको आप साफ कीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरा जो मन है बहुत कलमशों से भरा हुआ है, तो सारे कलमश दूर होने के लिए एक ही है आपका सांगति, आपका सानिधि मेरा एकमात्र, भले बहुत विरह था। किसी भी प्रकार के रामानंद राय वो अपने कार्य करने के लिए गए और महाप्रभु के वह दिन भर इधर रुके। उस समय महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण आए, प्रणाम किए, उनको प्रेम से निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए। महाप्रभु ने सोचा कि ये ब्राह्मण वैष्णव है ये समझ के उनके घर में जाके महाप्रभु भोजन ग्रहण किए और शाम के समय जैसे महाप्रभु के पास रामानंद राय आए, आते ही महाप्रभु ने रामानंद राय को आलिंगन किया, उनको बिठाए और एकांत स्थान में बैठे, क्योंकि सुबह का संवाद हो रहा था सब ब्राह्मणों के सामने हो रहा था, तो ये ब्राह्मण लोग इनकी वे प्रेम व्यवहार समझ नहीं पा रहे थे, उनके वजह से थोड़ा सा लज्जा हो रहा। इससे महाप्रभु ने सोचा चलो हम एक एकांत स्थान में जाएंगे। एकांत स्थान में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु बैठे और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं प्रभु कहे पद श्लोक साध्य निर्णय राय कहे सर्म धर्माचार स्वधर्माचार विष्णु भक्ति होय। प्रभु कहे पद श्लोक साध्य निर्णय, तो आप एक श्लोक को बताओ जिसके अंदर साध्य निर्णय यानी जो हमको क्या प्राप्त करना है, प्राप्य क्या है उसके विषय में, गोल ऑफ लाइफ हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है उसके विषय में मुझे कहिए। लेकिन जब आप कहोगे आप एक श्लोक के साथ कहिए यानी शास्त्रों का कोटेशन के साथ कहिए, ऐसा महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा। तुरंत राय कहे राय रामानंद राय कहा रामानंद राय ने कहा स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति होय, आप अपना स्वधर्म का आचार करो यानी वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी आपका वर्ण और आश्रम है उसके अनुसार आप जो भी कार्य करना है करते जाओ, लेकिन कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए करो, कृष्ण की सेवा के रूप में आज वर्णाश्रम धर्म को पालन करो। और जैसे इस प्रकार उन्होंने कहा तो महाप्रभु ने तुरंत कहा ये होय बाह्य, उन्होंने कहा प्रभु कहे ये बाह्य आगे कोहार, राय कहे कर्म कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सार। तब रामानंद राय ने कहा कि चित्र महाप्रभु ने कहा ये बात सुन के ये होय बाह्य, बाह्य का अर्थ क्या है, ये तो बाहर की चीज है, ये तो बाह्य अस्तित्व है, मैं इसको एक साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं, आगे कहो और आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा ठीक है यद करोश यद जोश यद स्नान यद तपस्या कौन सी तत्कुरुष्वावदर्पणम कर्मार्पण, कर्मार्पण जो है सारे साध्य का सार है, इसलिए हर व्यक्ति को कर्मार्पण करना चाहिए, अपने अपने जो भी कार्य करेंगे सारे कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए, कर्मार्पण है। तो महाप्रभु ने कहा हे ओ बाह्य आगे कहो और, ये भी बाह्य है ये आज कुछ आगे और कहो। तब रामानंद राय ने कहा ठीक है सर्वधर्म त्याग यही साध्य सार, जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वजा अहम त्वां सर्वाभ्य मोक्षिष्यामि मासुचा, ये सर्वश्रेष्ठ ये सब कुछ ये सबसे महान है। तब जैसे महाप्रभु ने ये बात सुना कहा ये हो बाह्य आगे कहो और, अरे ये तो बाह्य चीज और आगे कहो, ये देखो गीता का ये जो इसको बोला जाता है चरम श्लोक की गीता, ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, ये भी साध्य नहीं है और क्या है। तब रामानंद राय ने कहा प्रभु कहे ओ भाई आगे कहो आर, राय ने कहा ज्ञानमिश्र भक्ति साध्य सार, राय कहे ज्ञानमिश्र भक्ति साध्य सार, ये जो ज्ञानमिश्र भक्ति है वो सारे साध्य का सार है। तो उन्होंने एक श्लोक कोट किया ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचति न कांक्षति तम सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते पराम, आप जो ना शोचति न कांक्षति कोई चीज का आकांक्षा मत करो और कोई चीज का इच्छा मत करो, कोई शोक मत करो और सारे जीवों को समान दृष्टिकोण से देखो और उस व्यक्ति को भक्ति प्रदान होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु को हे होय बाह्य ए होय बाह्य आगे कहो यार, और आगे कहो, और इसके आगे कौन सा है भाई। तब जैसे राय रामानंद ने इस प्रकार सुना, तुरंत राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार, सारे साध्यों का सार है प्रेम भक्ति। और उनका सपोर्ट करते हुए एक श्लोक को उच्चारण करते हुए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते हैं, हाँ ये बराबर है, एकदम बिल्कुल बराबर चीज कहा उन्हें। ज्ञाने प्रयास मुदपास्यमन्ते जीवन्ति सन्मुखतम भवदी वार्ताम स्थाने संशिधिकताम तनुवांग मनोभे ये प्रायसो जितो विजित तेईस त्रैलोक्यम। जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय कहते हैं कि सारे प्रकार का प्रयास त्याग करो, ज्ञान कर्म इत्यादि सारे प्रयास को त्याग करके केवल जहां हो स्थान बैठ के कृष्ण का नाम उच्चारण करो, कृष्ण कथा श्रवण करो। और जैसे रामानंद राय ने इस बात को कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये हॉय ये ठीक है ये ठीक है, आगे कहो यार ये ठीक है, लेकिन आगे और आगे कहो। अभी देखो, अभी अभी देखेंगे इन इन संवाद में। सबसे पहले रामानंद राय ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, साध्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। चैतन्य महाप्रभु ने उसको सर्वसाध्य सार के रूप में नकार दिया, तिरस्कार क्यों किया, क्योंकि जब कोई वर्णाश्रम धन के अंदर कृष्ण की भक्ति करता है, भले ही कृष्ण की भक्ति है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उनका पहचान क्या रहता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अभी भी उनका पहचान शारीरिक स्तर में है, इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, बाह दिया। अभी उसके बाद रामानंद राय को चैतन्य रामानंद राय ने महाप्रभु को कहा कि कर्मार्पण कर्म करो और उसका फल को भगवान को अर्पण करो, कर्मार्पण। महाप्रभु ने कहा यही बाह्य है, क्यों, क्योंकि अभी भी उसका आसक्ति जो है कृष्ण के प्रति नहीं है। किसके प्रति आसक्ति है, कार्य के प्रति है। जैसे हम बहुत सारे कार्य करते हैं और किसके लिए करते हैं, कृष्ण के प्रति करते हैं। अरे मान लो किसी को कहेंगे कि अभी तक आज पूजा कर रहे थे, अभी आप जो है संकीर्तन करो, नहीं मैं क्यों करेगा, मैं वही करेगा। तो कुछ लोग झगड़ा करते हैं, क्योंकि अभी उनका आसक्ति किसके प्रति है, कार्य के प्रति है, उनका आसक्ति भी कृष्ण के प्रति है। अगर अभी बड़ा प्रवचन दे के आया, तुरंत बोलेंगे अभी टॉयलेट साफ करो, तो वो खुशी खुशी करेगा एक बार से, क्यों, क्योंकि मालूम है बड़ा प्रवचन भी किसके एक प्रसन्नता के लिए किया है, टॉयलेट भी किसके लिए प्रसन्नता के लिए हो रहा है, ये सर्वोच्च चीज है। इसलिए कर्मार्पण में क्या है, ये दोष रहता है, आसक्ति जो है कार्य के प्रति रहता है, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैं इतना किया, मैं इतना किया, मैं वो कर सकता हूं। कृष्ण के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, भले वो कृष्ण के लिए हो रहा है, लेकिन हमारी चेतना जो है किसके प्रति होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने कहा ये ठीक है, ये भक्ति है, लेकिन थोड़ा आगे होना चाहिए, आगे कुछ करना चाहिए, ये हो। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा कि रामानंद राय ने कहा कि आगे कहता हूं, ज्ञान मिश्र भक्ति ये सर्वोच्च चीज है। जैसे ज्ञान मिश्र भक्ति की बात हुआ तो तुरंत क्या हुआ, महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जब इन्होंने सुना शुद्ध भक्ति के विषय में, तब महाप्रभु शांत हुए। जब शांत होने के बाद तब महाप्रभु ने कहा आगे और कहो। जब आगे और कहो उस बात की बात हुआ, तब रामानंद राय एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को उच्चारण करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है जो शुद्ध भक्ति के स्तर में आने के बाद भी हमको और आगे बढ़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को सुन के एकदम अति प्रसन्न हो गए। ये सारे भक्तों के लिए, खास करके जो साधक भक्त है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि इतना भक्ति करने के बाद प्रभु जी रुचि नहीं हो रहा है, तो रुचि कैसे उत्पन्न होगा, उसके विषय में रामानंद राय एक श्लोक को कोट करते हैं, कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियतामिति कुतो विलभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। कहा कृष्ण भक्ति रसभावितामति, ये जो कृष्ण भक्ति का जो रस आस्वादन जो है वो तभी हमको प्राप्त हो सकता है जब हम उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। अब जो खरीदने की बात होता है तो हम पैसा नहीं देंगे। ये कृष्ण भक्ति ऐसा चीज है जो पैसे से नहीं खरीद सकते हो, तो उसको कैसे खरीदेंगे, उसको खरीदने की जितना लालसा होगी उतना आपको प्राप्त होगा। ये भक्ति ऐसा चीज है, आप जितना चाहोगे उतना मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी भक्ति हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, भक्ति करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम वो है। ये भक्ति ऐसा चीज है जितना करोगे उतना होगा, जितना चाहते हो उतना प्राप्त होगा, और जितना नहीं चाहते हो उतना प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई कहे भक्ति नहीं हो पा रहा, इसका अर्थ क्या है, उतना नहीं चाहता है। जितना चाहोगे कृष्ण का भक्ति करना उतना भक्ति होगा। इसलिए तत्र लौल्यम अपि मूल्यम, एक लौल्य ही एकमात्र चीज है। ये महाप्रभु की जो संस्था है, महाप्रभु की जो आंदोलन है, उसमें लौल्य दिखाई पड़ता है। जितने भी अन्य बड़े बड़े सिद्धांत को प्रकाशित किए गए, लेकिन तत्व जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन ये जो लौल्य ही एकमात्र चीज है, जो ये महाप्रभु का आंदोलन को ये स्थापना करने वाला विशेषता है, महाप्रभु आंदोलन का विशेषता है लौल्य। तो इट्स बी ग्रीड, ग्रीड का अर्थ क्या है, एकदम इतना ऐसा आसक्ति ताकि मुझे और सुनो और सुनो, और काफी नहीं। प्राय लोग भक्त मंदिर में जाते हैं, जाके दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन जब एक बार हमारे मंदिर में आते हैं तो निकलना नहीं चाहते। लोग बोलते हैं क्या करते हैं मंदिर में इतना दिन, पूरा दिन ये कोई होता है क्या कुछ, हमने कल इतना ही सुना ना, मंदिर में दर्शन करो आ जाओ, उतना ही ना, मंदिर जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, जाके आ जाता हूं। लेकिन जाने का तो सवाल है, लेकिन आने का सवाल है नहीं हरे कृष्ण मंदिर में। क्यों? क्योंकि लोभी व्यक्ति जो है, मान लो खाने का किसी का लोभ है, शुरू तो करेगा लेकिन अंत खत्म करने की बात ही नहीं करेगा, है कि नहीं? जैसे लोभी व्यापारी है, वो व्यापार शुरू करेगा लेकिन बंद करेगा कभी? जितना मिलेगा वो सोचे उतना और चाहिए, जितना मिलेगा और उतना सोचे और चाहिए। इस प्रकार ये हमारा आंदोलन, इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद संवाद में इतना अद्भुत बात कहा गया है। ऐसा करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद संवाद में महाप्रभु क्या कहते हैं और आगे कहो, जैसे आगे कहने के लगा चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय ने कहा चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है अभी मैं आगे कहना चाहता हूं, तो सुनिए क्या है वो रस भक्ति। यानी रस भक्ति का अर्थ क्या है, जो पांच प्रकार का रस है, दास्य रस, दास्य शांत दास, साक्षी वात्सल्य माधुर्य, उनमें से शांत के बारे में तो नहीं कहा, उसके बाद दास्य रस, उसके बाद साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य। तो एक एक बार जब एक भक्ति का वर्णन किया तो तुरंत जितने महाप्रभु कहते हैं आगे कहो और आगे कहिए और आगे कहिए। ऐसा करते करते जब माधुर रस की बात आई तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे बड़ा अद्भुत बात है, कुछ और आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा इसके आगे तो है ही नहीं कुछ बात, महाप्रभु इतना मधुर आस्वादन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि और आगे कहो। और जैसे चैतन्य महाप्रभु और आगे कहने के लगा, तब रामानंद राय ने क्या किया, कृष्ण के गुणों का वर्णन करना शुरू किया। और कृष्ण गुणों का वर्णन करते करते रामानंद राय के मुख से महाप्रभु ये सब सुन रहे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो रस का सीमा तक पहुंच गए, कुछ और आगे कहो। तब रामानंद राय ने राधारानी के गुणों का वर्णन करना शुरू किया। जब राधारानी के गुणों का वर्णन करना शुरू किया रामानंद राय ने, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज तक इन बातों को किसी ने नहीं सुना है, मुझे इतना अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है, और आगे कहो रामानंद राय। रामानंद राय कहते हैं अस्तित्व में मेरा जिह्वा जो है आपकी हाथ में एक वीणा जैसा है, आप जैसे बजा रहे हो उस प्रकार बज रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं तो फिर भी मैं आगे कहता हूं। तो रामानंद राय एक गीत गाने लगे, राधा कृष्ण प्रेम का गीत गाने लगे, जिसके अंदर जो प्रेम विवर्त, ये जो विवर्त होता है, विवर्त जो है, विवर्त का अर्थ है कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मान लीजिए प्रेम में क्या होता है, एक जिसको प्रेम करते हो आप उनको सुख देते हो, नम्र रहते हो, शांत रहते हो, लेकिन ये प्रेम विवर्त मतलब प्रेम है लेकिन व्यवहार में उल्टा दिखाई पड़ता है, ये प्रेम की सीमा हो जाता है। कभी कभी गोपियां कृष्ण के ऊपर नाराज हो जाती है, बोलते तुम चले जाओ दिखाओ, उनको देखना नहीं चाहिए तुमको, क्योंकि देख देख के हम परेशान हो गए। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि ये नाराज होके उनको देखना नहीं है, ये किसी के ऊपर नाराज होना, ये सब चीजें ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं है, ये लगता है कि द्वेष है। लेकिन प्रेम का जो सीमा जो है उसके अंदर विवर्त की भावना होती है। महाप्रभु ने जैसे ही बातों को सुना रामानंद राय के मुख के पास महाप्रभु का हाथ चला गया, बस बस ये इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसका वर्णन करते हैं रामानंद राय ने, राधारानी का महिमा को वर्णन किए। क्या है महिमा? जो स्वयं कृष्ण जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंदम के पदों को वो लिख के उच्चारण करके उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा श्लोक को उच्चारण किए, जिसके अंदर स्वयं श्री कृष्ण राधारानी को मनाने के लिए वो क्या कहते हैं, देही पदपल्लम उदारम, हे राधे आपके चरण को मेरे सर के ऊपर रखो। ये बातों को सुन के महाप्रभु एकदम बिल्कुल विवल हो गए। अस्तित्व में रामानंद संवाद जो है ये स्वयं राधा कृष्ण का प्रेम तत्व का सर्वोच्च प्रकाशन है। लेकिन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं कहे रामानंद राय को? क्योंकि वो है स्वयं श्रीमती राधारानी। अस्तित्व कौन कह सकता है? ये रामानंद संवाद में हम बाहर से अनेकों अनेकों तत्वों को हम सुन रहे हैं, लेकिन मूल तत्व क्या है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधारानी का भाव में स्वयं श्री कृष्ण है। और किस रूप में है? कृष्ण को ढूंढते हुए राधारानी जा रही है। हे कृष्ण तुम कहां हो? हे कृष्ण कहां हो? कृष्ण 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 है, ये क्या है? ये राधारानी कृष्ण के घेरे में ढूंढ रही है। वही राधारानी कोई और नहीं, चैतन्य महाप्रभु है। इधर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में ढूंढ रहे हैं, कृष्ण के विरह में ढूंढते ढूंढते कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। और रामानंद राय कौन है? वो विशाखा सखी। विशाखा सखी राधारानी को सांत्वना दे रही है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है उनका जो प्रवाह दो स्तर में होता है, एक बहिरंगे के अंतरंगे के। जब हमने जो चर्चा किया श्लोकों में दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? बहिरंगी प्रवाह है जिसके अंदर राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद है कृष्ण प्रेम को राधा कृष्ण तत्व को प्रकाशित करने वाला है। लेकिन जो अंतरंगिक प्रवाह क्या है? अंतरंगिक प्रवाह है राधारानी कृष्ण के विरह में रो रही है और विशाखा देवी उनको क्या कर रही है? सांत्वना प्रदान कर रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है अद्भुत है, बड़ा दिव्य है। कृष्ण का जो लीला है एक ही फ्लो वाला है, लेकिन इधर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। एक तो लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करना है, दूसरा प्रेम को आस्वादन करना है। अगर मान लो प्रेम को आस्वादन करता है वो कैसे प्रचार कर पाएगा? लेकिन साथ साथ में कृष्ण प्रेम को भी प्रचार भी करना है, आस्वादन भी करना है। ये चैतन्य महाप्रभु सारा जगत को ये रामायण संवाद के द्वारा कृष्ण प्रेम तत्व का प्रचार भी करते हैं और साथ साथ में आस्वादन भी करते हैं। तो बात यह है कि अनेकों अनेकों भक्तों के साथ जब चर्चा करता हूं तो वो लोग कहते हैं प्रभु जी प्रचार करो भक्ति करो, लेकिन आप ये महाप्रभु का ये सर्वोच्च लीला का उदाहरण क्या है? प्रेमास्वादन, वही प्रेम का प्रचार, ये सार है रामानंद संवाद का। अनेकों जो शिक्षाएं आदान प्रदान की शिक्षाएं बहुत हुई है आगे महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद में, जो हम दक्षिण भारत की यात्रा कैसे और निकल पड़े और आगे क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे लोगों को उद्धार किया, क्यों से कौन से तीर्थ स्थान में गए, उसका वर्णन हम आपको प्रॉमिस किया था कभी और कहेंगे, उसका डेट वगैरह आपको बताया नहीं। दक्षिण भारत की जो यात्रा है, यात्रा स्थलों की विशेषता जो है हमने कुछ दिन पहले कांदिवली में लिया था, उसी चीज को मीरा रोड में भी कभी करेंगे, मई या जून में कभी करेंगे। श्रीपाद रामानंद राय की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की। अभी हमारा और एक प्रवचन होगा नारायणी माता जी के द्वारा, तो आप सबसे निवेदन है कृपया करके ये 10:30 बजे ठीक शुरू हो जाएगा प्रवचन, आप थोड़ा सा उठ के नीचे बैठ सकते हैं और बैठ के कीर्तन में भाग ले सकते हैं, उस प्रवचन में सब लोग रहिए। और इस प्रवचन के बाद 1 बजे जो है बद्री नारायण महाराज के द्वारा भी प्रवचन होगा, तो आप सबसे निवेदन है कृपया करके आप उस प्रवचन में भी आप बैठिए। हरे कृष्णा। जिन लोगों को किचन में सेवा की भी अवसर है उसमें भी जाना है तो जा सकते हैं। हरे कृष्णा।